जो संस्कार है और जो ध्रुवन जो केरल में इकट्ठे हुए हैं, यही मलदोष के नाम से कहे गए। इनके नाश के वास्ते निष्काम कर्म यानी स्वार्थ का त्याग करके उत्तम कर्मों का करना, जग करना, दान देना, तप करना, सेवा करना, तीर्थ करना, व्रत करना, उपवास करना, जितने जो क्रियात्मक जो शास्त्रवीत कर्म है वे उनका नाम समझो कि कर्म है। और वे निष्काम भाव से किए जावा तो उसका नाम निष्काम कर्म है। स्वार्थ और आसक्ति को त्याग करके, अहंकार और ममता का त्याग करके जो हमारे द्वारा कर्म किए जावे वे निष्काम कर्म है, उनसे अंतःकरण की शीघ्र शुद्धि होती है और तब परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं ध्याय कामान ये सर्वान को मास्तर निष्प्रियो निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। ये पुमान जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके और हंता और ममता से रहित होकर के और सप्रिया से रहित होकर के जो संसार के वहां विचरता है यानी शास्त्रवित कर्मों का आचरण करता है वह शांति को प्राप्त होता है यानी परमात्मा को प्राप्त होता है। और भगवान के नाम का जो जप है उससे भी पापों का नाश शीघ्र हो जाता है। यदि वो नाम का जप हम निष्काम करें तब तो कहना ही क्या है, उसके बराबर तो पापों के नाश करने की और किसी की शक्ति है ही नहीं। और चित्त के मन जो चंचलता है, विक्षेप है, संसार के जो संकल्प होते रहते हैं उनके नाश के वास्ते समझो कि परमात्मा का ध्यान और समझो कि जो विवेक जो है विचार, इससे एक प्रकार से आपने विक्षेप का नाश हो जाता है। और आवरण दोष के नाश के वास्ते सत्य पुरुषों का संग और सत्पुरुषों के अभाव में सत्य शास्त्रों का जो अनुशीलन है, उनका जो अध्ययन है जिसको हम स्वाध्याय कहते हैं, उससे समझो कि आवरण का नाश होता है। तो इन तीनों के नाश के लिए हमको रात दिन विशेष चेष्टा करनी चाहिए। ऐसा मौका पाकर के यदि उस परमात्मा की प्राप्ति से हम लोग वंचित रह गए तो फिर समझो कि आगे जाकर के स्वार रोने के और कोई भी उपाय नहीं। जो भगवान ने दया करके हम लोगों को मौका दिया है ये एक प्रकार से थी भगवान की विशेष दया समझनी चाहिए। रामायण में कहा भी कबहूं के कारी करुणा नर देही देत ईस बिनु हे तू सनेही। कबहूं के करी करुणा नर देही, 84 लाख योनियों में ये जीव भरता भरता तंग आ जाता है तब भगवान को दया आ जाती है, तब भगवान समझो कि दया करके इसको मनुष्य का शरीर देते हैं। कहते जो भगवान है कि बिना ही कारण दया और प्रेम करने वाले, इस प्रकार के समझो कि लाभ को पाकर के फिर अपना विलंब नहीं करना चाहिए। सब काम छोड़ करके हमको पहले उस काम को करना चाहिए कि जिस काम के लिए ये मनुष्य का शरीर हमको मिला है, तो ये मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो परमात्मा की प्राप्ति का जो कार्य है वो सबसे जरूरी है, इसलिए उसको सबसे पहले करना चाहिए। ये काम यदि बाकी रह जाएगा तो हमारे मरने के बाद इसकी पूर्ति करने वाला कोई भी हिस्सा नहीं, इसलिए जीते ही हमको इस काम को सारना चाहिए। इसके आगे वो सब काम गौण है। संसार के जो सारे पदार्थ हैं ये तो बांधने वाले हैं, इनमें जो हंता ममता आसक्ति आदि है वे बांधने वाले हैं, इसलिए उनका त्याग करके और इस इन सब चीजों को हम परोपकार के लिए लगा देवे तो ये हमारे लिए सहायक हो सकते हैं।
Narayana, 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 Sriman Narayana, Narayana, Sriman Narayana, 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 Sriman Narayana, Narayana, Sriman Narayana, Narayana,
जब ये जीव समझो इस शरीर का त्याग करके विदा होता है तो ये संसार के कोई भी पदार्थ इसके साथ में नहीं जाते, ये शरीर भी साथ के वहां नहीं जाता। तो क्या चीज साथ में जाती है? ये सूक्ष्म शरीर इसके साथ में जाता है। और ये बात देखने में भी आती है, जब मनुष्य मरता है तो ये पांच भौतिक शरीर तो यहाँ रह जाता है और बाहर के पदार्थों की तो बात ही क्या है, वो तो रहते ही हैं। शरीर के मां देखते हैं तो प्राण देखने में नहीं आती और मन बुद्धि देखने में नहीं आती और दस इंद्रियों की शक्तियां देखने में नहीं आती। तो दस इंद्रियां, पांच प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 पदार्थों के सहित ही ये जीवात्मा इस शरीर से बाहर निकल के जाता है। तो इनके भीतर के मां जो चीज भरी जाती है वो साथ में जा सकती है। तो इनके मां जो खराब पदार्थ भरे हुए हैं उनको निकाल देने चाहिए, उनको एक इनको सबको शुद्ध बनाना चाहिए। इंद्रियों के मां जो पाप भरे हुए हैं, इंद्रियों के द्वारा जो पाप किए हैं उससे इंद्रियां दूषित हो गई। और मन और बुद्धि के बीच के मां जो कि पाप भरे हुए हैं और दुर्गुण भरे हुए हैं, इनको शुद्ध बनाना चाहिए। शुद्ध बनाने के लिए आपको बताया ही निष्काम कर्म और भगवान के नाम का जप सबसे बढ़कर चीज। और उसमें क्या भरना चाहिए कि अच्छे अच्छे पदार्थ भरने चाहिए। जैसे कैमरा होता है और कैमरे के सम्मुख जो दृश्य होता है उसके दृश्य के संस्कार जो के त्यों कैमरे में भरे जाते, इसी प्रकार से दृश्यों को भरने के लिए ये हमारा जो शरीर है ये कैमरा है और ये जो हमारे नेत्र हैं ये दृश्य को पकड़, तो हमारे नेत्रों के सामने दृश्य अच्छा रखना चाहिए हर वक्त। या तो ये भाव रखना चाहिए कि हमारे नेत्रों के सामने जो कुछ प्रतीत होता है ये सब साक्षात परमात्मा का है। ये भाव एक प्रकार से संसार के पदार्थों के मां ये भाव रख करके के और उस दृश्य को देखना चाहिए। तब भीतर के बीच के मां समझो कि भगवत भाव से थी परिपूर्ण जो है ये दृश्य हमारे हृदय के मां प्रवेश हो तो कल्याण के करने वाला होगा। जो जो कुछ हमारे को प्रतीत होता है सब परमात्मा का स्वरूप है और ये बात सच्ची है क्योंकि परमात्मा के हृदय का भाव है, इस वास्ते परमात्मा का स्वरूप है, ये सब परमात्मा का संकल्प है इसलिए परमात्मा का स्वरूप है। जैसे रात्रि के समय में स्वप्न के बीच के बाद जो कुछ स्वप्न की संसार दिखती है वो क्या चीज है, जिसको स्वप्न आता है उसका संकल्प है, इस बात से उसका स्वरूप ही है। तो ये संसार क्या है, ये परमात्मा का संकल्प है। सृष्टि की आदि में समझो कि भगवान तो सच्चिदानंद परमात्मा उसमें ये संकल्प हुआ कि एक ओम बहु श्याम है, मैं एक है तो बहुत हूँ, तो बहुत रूप में हो गई संकल्प से। तो ये जो कुछ परमात्मा का स्वरूप है, इसी बात को समझाने के लिए भगवान ने गीता में कहा भी है कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम प्रबद्धते वासुदेव सर्वनीति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो कुछ है सब वासुदेव ही है, इस प्रकार से ज्ञानवान मुझको घटता है यानी अनुभव करता है। वह ज्ञानवान जो है अति से दुर्लभ महात्मा पुरुष है, ऐसे उसकी प्रशंसा गाई गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में। इसलिए हम लोगों को बारंबार यही भाव करना चाहिए कि जो कुछ है साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, जो कुछ है साक्षात परमात्मा का स्वरूप, इस प्रकार से समझ करके और हमारे हृदय की इस दृश्य का भाव भरना चाहिए। भगवत भाव से इसको समझो कि परिपूर्ण कर करके हृदय में ये भाव धारण करना चाहिए। और जो चेष्टा हो रही है, क्रिया हो रही है, जब सब भगवान का ही स्वरूप है तो उनके द्वारा होने वाली क्रिया वो भगवान के चरित्र है, या यूं समझे भगवान की लीला है। तो वस्तु मात्र को भगवान का स्वरूप और चेष्टा मात्र को भगवान की लीला समझ करके और इस दृश्य को नेत्रों के द्वारा अपने हृदय के मन समावेश करना चाहिए। ये भीतर में जाने से समझो कि अपने जब भीतर में प्रवेश हो जाएगा तो बस हम शीघ्र ही महात्मा बन जाएंगे। दूसरी बात यह है कि कानों के द्वारा जो कुछ सुनाई देता है उसमें विचार करना चाहिए। फोनोग्राफ की एक प्रकार से जो चूड़ी होती है उसमें जैसी भावना भरी जाती है वैसी वो बोलती है। जैसे हम लोग इस बाजे के मां इस चूड़ी के मां जो भर देते हैं वो ही एक प्रकार से अंकित हो जाता है, ठीक फिर वही आवाज वापिस आती है। तो इसी प्रकार से थी ये हमारे जो दो कान है जंतर है, शब्द भरने के जंतर, इन कानों के माध्यम जैसे शब्द भरे जाते हैं वो भीतर में जाकर अंकित हो जाते हैं। तो कानों से अच्छे अच्छे शब्द सुनने से ही भगवान के प्रेम की प्रभाव की बातें, गुणों की बातें, तत्व की बात, रहस्य की बात सुननी चाहिए, ज्ञान वैराग्य भक्ति की बातें सुननी चाहिए। तो इस प्रकार हम सुनेंगे तो वे जाकर अंकित होंगे, उसका संग्रह होगा, उससे हमारा कल्याण इसी जन्म में हो सकता है। इसी प्रकार से थी हमारी और इंद्रियों के भीतर के बीच के मां जो एक प्रकार से दोष है उनको भगवान का भजन जान करके नाश कर करके के शुद्ध बना करके उसके बीच के मां समझो कि अच्छे संस्कार भरने चाहिए। पैरों से समझो कि तीर्थ यात्रा करनी, भगवान के मंदिरों में जाकर भगवान की मूर्ति का दर्शन करना, महात्माओं के पास में जाकर के उनका दर्शन करना, तो ये पैरों से काम लेना चाहिए। और हाथों से थी दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दूसरों का उपकार करना चाहिए, और दुखी अनाथ है उनको दान देना चाहिए। सदाचारी और विद्वान अच्छे गुण वाले जो ब्राह्मण है उनको दान देना चाहिए। इस प्रकार से थी समझो कि हाथों से अपना काम लेना चाहिए। हमारी सारी जो इंद्रियां हैं उनको सत्काम में लगाना चाहिए, वाणी के द्वारा समझो कि सत्प्रिय और हित के वचन कहनी चाहिए या स्वाध्याय करना चाहिए, तब हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है। इसे एक प्रकार से इस प्रकार के करने से हमारी वाणी शुद्ध होकर के परमात्मा की प्राप्ति के वहां मदद करने वाली हो जाती है। इस प्रकार के करने से इसी जन्म के बीच वहां हमारी आत्मा शुद्ध होकर के और परमात्मा का ज्ञान होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। हमारी मूर्खता के कारण से या अक्रमणता के कारण से हम एक प्रकार से समझो कि इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, नहीं करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल है। जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो एक प्रकार से थी निरंतर अपने समय को उत्तम से उत्तम काम में लाकर के अपना इसी जन्म के मां कल्याण कर लेता है, और जो मूर्ख होता है संसार के विषय भोगों में फंस करके समझो कि अपने आप ही अपने आप का पतन कर लेता है। इसके ऊपर आपको एक हम कहानी कहते हैं। कहानी का मतलब लोकोक्ति, जो शास्त्रोक्त जो प्रमाणिक जो बात होती है उसको तुम कथा कहते, और जो लोकों में जो प्रचलित है पता नहीं कि वो बात घटना हुई है या एक कल्पित है उसको कहानी कहते, किंतु उसमें हमको शिक्षा लेनी थी। एक देश के बीच के वहां जो है ऐसा कायदा था कि वहां कोई जन्म सिद्ध राजा नहीं होते थे, वहां जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं या सभापति कहते हैं या उस देश के लोग उसको चुन लिया करते थे, जिसको चुन लिया करते थे वो ही वहां का एक तीन साल के लिए राजा हो जाता था। राजा का लड़का राजा हो ऐसी प्रथा नहीं थी, तो वहां ये रिवाज थी कि तीन साल तक उसका पूरा अधिकार रहता था कि वो जो चाहे सो कर सके, और तीन साल के बाद उस देश में एक बड़ी भारी नदी थी, उस नदी के उस पार के मां एक बड़ा भयंकर बंध था। तो लोग क्या करते थे कि तीन साल के बाद बड़े बड़े आदमी प्रतिष्ठित आदमी उसको नदी के पास पहुंचाने के लिए आते थे और नौका में बैठा करके और उस पार उसको कर देते थे और नौका वापस आ जाकर, और वो जंगल के बीच के मन चला जाता वहां उसको बाघ वगैरह खा जाते थे, उसका वो भावी जन्म उसका नष्ट हो जाता। यही रिवाज थी। तो लोग क्या करते कि जब राजा हो जाते थे खूब वंश आराम भोग करते, और फिर जब नौका में बैठकर उसको उस पार किया जाता तो वो रोता रोता जाता, क्योंकि वो समझता था कि मैं सदा के लिए विदा हो रहा हूं। एक कोई परम बुद्धिमान मनुष्य वहां का प्रेसिडेंट बनाया गया यानी राजा बनाया गया, वह बड़ा विवेकशील और बुद्धिमान था। उसने क्या किया कि जैसे पूर्व वाले राजा अहसार और भोगों के बीच के मां अपने तीन साल बिता दिया करते थे ऐसा उसने नहीं किया। तो उसने क्या किया कि उसने ये चेष्टा की, सबसे पूछा कि मेरा क्या अधिकार है, सबने ये कहा कि तीन वर्ष आपका पूरा अधिकार है, जो आप इच्छा हो तो कर सकते, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि तीन वर्ष के बाद जो है इस बड़ी नदी के उस पार भेजने की रिवाज है, ये सोच करके उन्होंने जो नदी के पार का जो देश है उसमें जो जंगल है उसको कटाया, आबादी करी और वहां एक प्रकार से वो जगह को निपजाऊ बना लिया, वहां अनाज क्या, फल क्या, साग क्या, अनेक प्रकार की चीजें वहां लगाई। और यहाँ के जो जन समुदाय है उनको भी वहां भेजना शुरू किया और वहां एक प्रकार से बसाया हूं। मैं बहुत शीघ्र राजधानी बसाई और संजोग की प्रजा बसाई और इस देश के बीच के वहां जितना जो धन है, खजाना है, फौज है, उस सबको वहां भेज दिया। वहां जाकर के खूब आबादी कर उसने पूछ लिया कि वही मैं सबके शुक्र बोले जो आपकी इच्छा हो तो कर सकते, आपका पूरा अधिकार। उसने समझो कि जो माल था, जो धन था, जो कुछ दामी चीज थी, जो कलकंता था, जो भी कुछ था, सब उस पार आपने पहुंचाया। उस पार पहुंचाने के बाद ऐसे पहुंचाते पहुंचाते अब तीन साल समाप्त होने पर शहर के बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग, मंत्री लोग सब उनको गंगा उस नदी के किनारे आए और समझो कि नौका में बैठा करके सब समझो कि परस्पर में नमस्कार करके उनको विदा किया। तो विदा होने के समय वो हंसता ही रहा। लोगों ने पूछा कि यहाँ से जो विदा होता है वो तो रोता ही जाता है और तुम हंसते जाते, उसका कारण क्या है? उन्होंने कहा कि जो रोते रहे हैं वे मूर्ख थे और मैं रोता क्यों जाऊं? मैं तो आज ही नहीं, मैं तो सदा के वास्ते हंसता ही रहूंगा। रो तुम, क्योंकि एक प्रकार से यहां क्यों मैं सफाई करके के जा रहा हूं, जो कुछ है वहां ही है सब, अब यहां क्या दया है? तो ये एक प्रकार से दृष्टांत है, उसको दृष्टांत में घटाना चाहिए। दृष्टांत ऐसा घटाना चाहिए कि यही देश है कि जहां हम लोग बात करते हैं और समझो कि प्रेसिडेंट का मतलब है कि मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर को पूरा अधिकार है कि संसार के मां की जब तक जीव है 40 वर्ष कर सके। वहां जो 3 वर्ष की म्याद थी वो हमारे इस मनुष्य शरीर की आयु है। इस मनुष्य शरीर को पाकर के हम सब कुछ कर सकते हैं, पर लोग जो है वो ये प्रकाश स्थिति नदी का वो पार है। और आयु समाप्त होने के ऊपर जब एक प्रकार से उस पार भेजा जाता था तो समझो कि आज ही उनके सदा के वास्ते उसको कष्ट कष्ट होता था। तो इसका यह मतलब है कि जब मनुष्य मर करके और चला जाता है तो सदा के वास्ते यहां से विदा हो जाता है, फिर उसकी रोना ही शेष रहता है। तो वह समझदार पुरुष का मतलब है कि विवेकशील ज्ञानी। उसने क्या किया कि ये संसार का जो कार्य है ये तो जो इनके अधिकारी हैं एक प्रकार से इसमें जो रचे पचे उनको सौंपा कि तुम इस काम को देखो। जो राज के अधिकारी हैं उनको सौंप दिया और यहाँ संसार के बीच के वहां जो विषय भोगों में रचे पचे उनको ये सब सौंपा भी तुम मोजा वैसा करो। और उसने क्या किया कि ऐसा साधन किया कि जो बढ़िया बढ़िया जो चीज है उस पार पहुंचा दिया। उस पार पहुंचाने का क्या साधन है कि नौका, तो यहाँ नौका क्या है और पहुंचाना क्या है कि जो अपने पास में पदार्थ है उदार भाव से थी समझो कि परोपकार के मन जो लगाना है वो ही नौका है। जो कुछ अपने अधिकार के मां है उन सब को जिसको हम अपना सत्ता कहते हैं उस अपने सत्तों को अपने अधिकार की चीजों को परमार्थ में जो लगा देना है वो ही इस पार से उस पार पहुंचा देना है। इस प्रकार से पूछा करके जब उसकी मृत्यु आई मरने लगा तो हंस रहा है। इस प्रकार से उन्होंने पूछा तुम क्या हंस रहे हो? बोलो मैं जिस काम के लिए आया था वो मेरा काम कर चुका है इसलिए हंस रहा हूं। कि लोग यहां से जो मर के जाते हो तो रोते ही जाते हैं। बोले वे मूर्ख है, मैं रोता क्यों? मन तो यहां कुछ छोड़ा ही नहीं। तो इस संसार के बीच के वहां आकर के और जो मनुष्य अपने अधिकार में जो चीजें हैं उन सबको परमार्थ में लगा देता है उसको आगे जाकर के रोना नहीं पड़ता। दूसरे आदमी जो एक प्रकार से अपना अधिकार जमा रखा है उसकी चीजों पर, दूसरे आदमी जो अधिकार जमा रखा है और आशा रखते हैं कि इसके मरने के बाद के मां हम इसके अधिकारी हुए हैं, तो ऐसे जो अपने आशा रखने वाले चाहे गैल से रोते हो वो क्यों रोएगा? जिसमें बुद्धि है समझ है उसने सोचा कि ये सब चीज जो है एक प्रकार से थी हमारे साथ में जाने का यही रास्ता है। और इस प्रकार से थी समझो कि परमार्थ में जो तन मन धन लगाने वाला पुरुष है, ऐसा जो परमार्थ करने वाला पुरुष जब निष्काम भाव से क्रिया करता है तो उसकी आत्मा का सुधार होकर के उद्धार हो जाता है। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग इस संसार के मां संसार के विषय भोग के भोगने के लिए नहीं आए, अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए आए और आत्मा के कल्याण करने का यही सबसे बढ़कर के मार्ग है कि हमारे अधिकार में जितने जो पदार्थ हैं वो इनके जो पात्र हैं दुखी हैं अनाथ हैं उनकी सेवा में लगाना और उसे लगाने का अभिमान नहीं करना और निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से आसक्ति को त्याग करके ममता को त्याग करके इन सब पदार्थों को जो अपने अधिकार के में है लगाना जो है वो बुद्धिमत्ता है। जो है इस प्रकार से बुद्धिमान जो पुरुष है उसका इसी लोक के मां कल्याण हो जाता है और नहीं तो समझो कि मरने के समय हो जाता है। ये दृष्टांत आपको बताया, अब दूसरी बात बतलाते हैं। नारायण नारायण प्रकार के रूप और रंग की तो दिख रही, किंतु जो मनुष्य अपने नेत्रों के ऊपर हरे रंग का तस्वा चढ़ा लेता है उसको या सुनता हरी हरी दिखती, या जो पुरुष जब श्रावण और भाद्र मास के मां खेतों में हरियाली छा जाती है, उस महीनों के बीच के मां जो आदमी उस हरियाली को देख करके आंधा हो जाता है तो उसको फिर सदा हरा हरा दिखता है। हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जैसे मनुष्य अपने नेत्रों के ऊपर हरे रंग का चश्मा चढ़ाता है तो सारी संसार उसको हरे रंग के मां दिखने लगती है। तो हमको यह करना चाहिए कि अपनी जो बुद्धि है उस बुद्धि के ऊपर हरि के रंग का चश्मा चढ़ाना चाहिए। हरि के रंग का चश्मा क्या? हरि के रंग का तस्मा यह है, हरि जो परमात्मा है वो जो भगवान जो है उस भगवान के भाव का तस्मा अपने बुद्धि पर चढ़ाना चाहिए। जैसे हमारा जो अंतकरण है हमारी जो बुद्धि है उसके भीतर के मां समझो कि भगवान के भाव का भगवत भाव का तस्मा चढ़ाना चाहिए। जब भगवत भाव का हम चश्मा चढ़ा रहे हैं तो हमको सर्वत्र भगवान का स्वरूप भी दिखने लगेगा, बुद्धि से सर्वत्र भगवान का स्वरूप दिखने लगेगा। जैसे नेत्रों के ऊपर हरे रंग का चश्मा चढ़ाने से तो सारी संसार हरे रंग के में दिखती है, इसी प्रकार से हरि के भाव का मन भगवत भाव का चश्मा हम अपने बुद्धि के ऊपर चढ़ाकर संसार की तरफ देखेंगे तो सब जगह हमको समझो कि साक्षात भगवान दिखने लगेंगे। जैसे गोपियों ने समझो कि अपने ऐसा चश्मा चढ़ा लिया था, उनको सर्वत्र भगवान कृष्ण ही दिखा करते थे, उन लोगों का ऐसा भाव हो गया था कि भगवान कृष्ण ही सर्वत्र दिखा करते थे। तो इसी प्रकार से थी हम लोगों को एक प्रकार से हृदय का जो भाव है वो बदल देना चाहिए। संसार के वहां जो सबसे बड़कर चीज है सो भाव है, रात्रि के स्वप्न के बीच के मां हमको स्वप्न के बीच के मां जो संसार दिखती है, स्वप्न की संसार वो क्या है, वो हमारे हृदय का भाव है और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से थी समझो कि यह जो संसार हमको प्रतीत होती है तो यह क्या है कि हमारे हृदय का भाव। जिसका जैसा भाव होता है उसको चीज वो वैसी दिखने लग जाती है। तुलसीकृत रामायण के वहां बताया है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है सो धनुष तोड़ने के लिए धनुष यज्ञ में गए थे तो वहां की चौपाई है कि जाती रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति दिन देखी तैसी, क्योंकि जैसी भावना थी भगवान उनको उसी रूप के में दिखे। और ये बात अब भी प्रत्यक्ष है, आप देखो कोई एक औरत है, उस औरत को कोई एक कामी पुरुष जो है काम भाव से देखता है तो उसको वो एक रमणी प्रतीत होती है, एक जो सिंह जो है उस औरत को देखता है तो ये समझता है कि ये समझो कि मांस की बुत है, ऐसा समझ करके उसको औरत अपना खाद्य पदार्थ दिखता है। एक जो लड़का है जो उसका छोटा बच्चा 3 साल का वो अपनी माता समझ के उसका दूध पान करता है तो उस लड़के को वो माँ जो है धात्री दिखती है। और एक वृद्ध जो पुरुष है वो उस स्त्री की तरफ देखता है तो उसको यूं प्रतीत होता है कि ये एक मल और मूत्र आज मनुष्य का एक थैला है। और एक ज्ञानी जो महात्मा जो पुरुष है उसको साक्षात परमात्मा के रूप में दिखती है कि वासुदेव स्मृति जो कि जो सब वासुदेव ही है। वो एक ही स्त्री अपने अपने भाव के अनुसार भिन्न भिन्न दिखती है। तो जब ऐसी बात है और संसार भावना मैं है और अपना भाव ही जो कुछ है तो फिर सबसे उत्तम तो यही बात है कि हम भगवत भाव से सबको देखें, सब में हमारी भगवत बुद्धि होए, जहाँ हमारे नेत्र जा वहाँ भगवान के स्वरूप को देखें, जहाँ हमारा मन जा वहाँ भगवान के स्वरूप को देखें, जहाँ हमारी बुद्धि जा हम भगवान के स्वरूप का निश्चय करें कि भगवान के स्वर को बस सुनी है। इस प्रकार के अभ्यास करने से आखिर के बीच के वहां इस प्रकार के भाव से आगे जाकर भगवान की प्राप्ति इसको हो जाए। तो अब समय हो गया।
नारायण नारायण
ایک چیز یہ سار سار بات آپ کو بتلا دی. اب ایک پرکار سے اب قریب 6 بج گئے.